जय राधा माधव जय कुंज बिहारी राधा जय राधा माधव जय कुंज बिहारी राधा जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवर जय हो जय हो जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवर जय यशोदानंदन जय ब्रज जन रंजन यशोदा जय यशोदानंदन जय ब्रज जन रंजन यशोदा जय यमुना तीरा बन चारी जय कुंज बिहारी जय हो जय हो जय हो जय यमुना तीरा बन चारी जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी राधा जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवर जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवर जय यशोदानंदन जय ब्रज जन रंजन जय यशोदानंदन जय ब्रज जन रंजन जय यमुना तीरा बन चारी जय कुंज बिहारी जय यमुना तीरा बन चारी जय कुंज बिहारी माधव जय कुंज बिहारी राधा जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। नितय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। जय प्रभुपदा 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 जय प्रभुपदा। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर श्री श्रीमदिस डिवाइन ग्रेस अभयचरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। नेतलीला प्रविष्ट इस्कॉन फाउंडर आचार्य सेवियर ऑफ दी होल वर्ल्ड जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा पार्थ सारथी ललिता विशाखा गोप गोपिका श्याम कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धन की जय। श्री श्री गौनताय की जय। श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय। श्री श्री प्रहलाद नृसिंह देव की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। इस्कॉन वर्तमान आचार्य वृंद की जय। श्रीमती तुलसी शालिग्राम जलदान महामहोत्सव की जय। शिल गदाधर पंडिताविर्भाव तिथि महामहोत्सव की जय। गौर प्रेमानंदे ऑल ग्लोरीज टू सिमिल डिवोटीज ऑल ग्लोरीज टू सिमिल डिवोटीज ऑल ग्लोरीज टू सिमिल डिवोटीज ऑल ग्लोरीज टू श्री गुरु एंड गौरांगा। हरे कृष्णा। तो आज बहुत ही पवित्र दिवस है, शिल गदाधर पंडित का आविर्भाव दिवस है। उनके विषय में गौर गणोदेश दीपिका में लिखा हुआ है, श्री राधा प्रेम रूपाया श्री राधा प्रेम रूपा या पुरा वृंदावनेश्वरी सा श्री गदाधरो गौरवल्लभा पंडिताख्य कहा। जो पहले वृंदावन की ईश्वरी थी श्री राधा, जो प्रेम की रूपिणी है, प्रेम रूपा है, कृष्ण प्रेम की मूर्तिमान रूप है, श्री राधा प्रेम रूपाया पुरा वृंदावनेश्वरी। तो पहले वृंदावन की ईश्वरी थी श्री राधा और प्रेम की रूपिणी थी। सा श्री गदाधरो गौरवल्लभा पंडिताख्य कहा। तो वही श्री गदाधर गौरवल्लभ पंडित नाम के हैं। तो गदाधर पंडित नाम के गौरवल्लभ हैं। वो कृष्ण वल्लभा थी स्त्री के रूप में, तो वही जो है पुरुष के रूप में अब गौरवल्लभ हैं। वल्लभा नहीं है, पुरुष के रूप में उन्होंने वो प्रकट हुई हैं राधा रानी। क्योंकि इस बार श्री कृष्ण जो है सन्यासी के रूप में हैं। सन्यासी के रूप में उनके साथ रहने के लिए जो स्त्रियां हैं वो भी पुरुष रूप में आईं। जितनी स्त्रियां हैं रूप मंजरी हैं, तो रूप गोस्वामी के रूप में हैं, लवंग मंजरी सनातन गोस्वामी के रूप में हैं, छह गोस्वामी सब पुरुष रूप में आए। क्योंकि सन्यासी का संग करने के लिए स्त्री नहीं हो सकती ना, तो पुरुष के रूप में श्रीमती राधा रानी जो है गदाधर पंडित के रूप में प्रकट हुई। हरि बोल। ये आवाज़ पकड़ रहा है? ठीक है, नहीं ठीक है, वो ये दूरी हो जाती है ना जब। तो पहले गौरी वैष्णव चरितामृत से हम सुनेंगे श्री गदाधर पंडित के बारे में। श्री गदाधर पंडित के प्रति श्री गौर हरि इतने अधिक स्नेहल थे कि वे क्षण भर भी उनके बिना नहीं रह पाते थे। वे श्री चैतन्य महाप्रभु के प्राकट्य के एक वर्ष पश्चात प्रकट हुए थे। एक वर्ष पश्चात नहीं कह सकते, एक वर्ष पश्चात ऐसे कह सकते हैं कि फाल्गुन पूर्णिमा में भगवान ने जन्म लिया, तो वो वर्ष का अंतिम दिन था और अगले वर्ष गदाधर पंडित ने जन्म लिया, तो 45 दिन का अंतर है, 45 दिन का अंतर है। लेकिन एक साल का अंतर क्यों कहा जाता है, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है एक दिन में भी एक साल का अंतर हो जाता है कि नहीं। 31 दिसंबर की रात में कोई घटना हुई तो भाई कहें कि ये जो है उस सन में हुई, और अगले दिन तो एक रात में ही जो है एक साल का अंतर हो जाता है। तो इस तरह से कहा जाता है कि गदाधर पंडित और श्री चैतन्य के जन्म में एक साल का अंतर है, लेकिन एक साल का अंतर थोड़ी है। वो फाल्गुन पूर्णिमा उस वर्ष का अंतिम दिन होता है, तो श्री चैतन्य ने जब जन्म लिया तो वो वर्ष माना जाएगा, और अगले वर्ष में गदाधर पंडित हुए तो 45 दिन के अंतर में हुए, है ना। तो 45 दिन का ही अंतर है। गदाई और नेमाई, ये सब नाम जो है इसी प्रकार के हैं, नेमाई नेताई, नेमाई नेताई, गदाई, ये सब जो है चूँकि भगवान का नाम नेमाई जन्म का नेमाई नाम है, इसलिए नित्यानंद का नाम पड़ गया नेताई, और गदाधर पंडित का नाम पड़ गया गदाई है। तो ये भगवान कारण कौन है, कारण कृष्ण ही है, सर्व कारण कारणम। तो ये नाम जो है नित्यानंद को नेताई इसलिए बोलते हैं कि नेमाई के समान नाम बनाने के लिए नित्यानंद को नेताई बोलते हैं, गदाधर पंडित को गदाई बोलते हैं। गदाई और नेमाई अविच्छेद्य बाल्यकाल के सखा थे। अविच्छेद्य का मतलब है कि इनमें छेदन नहीं हो सकता है, यानी भेद नहीं हो सकता है, इन दोनों में अभिन्नता है, इतने अभिन्न मित्र हैं गदाई और नेमाई। तो इनका जन्म तो दूसरे गांव में हुआ था, लेकिन 13 वर्ष की अवस्था में ये अपने मामा के घर आ गए थे, और इनके मामा का घर नवद्वीप में था। तो इस प्रकार से इनका संग श्री चैतन्य के साथ 13 वर्ष की अवस्था में हुआ था। तो बाल्यकाल के सखा थे, और इनका स्वभाव कैसा था, बिल्कुल शांत विरक्त गंभीर सौम्य एकांत प्रिय इनका स्वभाव। और इनके घनिष्ठ मित्र जो गौरांग हैं ये बिल्कुल उल्टे हैं जितने ये शांत हैं उतने वो चंचल हैं, वो बहुत चंचल हैं, विपरीत प्रकृति के हैं, बहुत चंचल अधीर नटखट और बहुत छेड़खानी करते हैं, है ना। और ये जो है बिल्कुल शांत प्रकृति के हैं। गंगादास पंडित की पाठशाला में नमाई पंडित तर्कहीन प्रश्नों द्वारा गदाधर को उद्विग्न करते रहते थे इस शब्द का अर्थ बताओ, और गदाधर पंडित कुछ भी अर्थ बताएंगे तो खंडन करेंगे, तुम तो जानते ही नहीं, तुम तो बताना जानते ही नहीं, तो हर बात का खंडन करेंगे। तो इस तरह से कोई व्यक्ति जो है उद्विग्न हो जाएगा ना तो हमेशा उद्विग्न करते रहते थे। श्री कवि कर्णपुर के कथनानुसार ब्रज लीला में गदाधर पंडित ब्रज भानु नंदिनी श्रीमती राधा रानी है। नवदीप लीला में गदाधर पंडित ने गौरचंद्र के मुख्य सहायक के रूप में उनकी सेवा की। वृंदावन के श्री श्री राधा कृष्ण गौर गदाधर के रूप में प्रकट होकर नवद्वीप में गंगा तट के वन्य कुंजों में लीलाएं करते हैं। ये राधा कृष्ण की लीलाएं होती हैं प्रेयसी के रूप में, राधा रानी प्रेयसी के रूप में है, यहाँ गदाधर पंडित सखा के रूप में लीलाएं करते हैं। गदाधर पंडित के गुणों एवं प्रेम का वर्णन कोई नहीं कर सकता, अतएव श्री चैतन्य का एक अन्य नाम गदाधर प्राणनाथ है, अर्थात गदाधर पंडित के जीवन आधार। एक दिन गंगा तट पर विचरते हुए गौर सुंदर ने एक वन्य कुंज में प्रवेश किया और ध्यानावस्थित होकर आसीन हो गए। शीघ्र ही अपनी वृंदावन लीलाओं का स्मरण करते हुए भाव विभोर हो उठे। भगवान का भाव आवर्धित करने हेतु तो मुकुंद दत्त पूर्व राग के मधुर गीत गाने लगे। श्री गदाधर ने सुगंधित वन फूलों की एक माला बनाकर प्रेम पूर्वक भगवान के सुंदर कंठ में सजाई। तो ये राधा रानी के रूप में जो कार्य करते हैं वही गदाधर के रूप में माला बना करके पहनाते हैं। जिस प्रकार वृंदावन में श्री राधा दामोदर को वस्त्र आभूषित करती थी, उसी प्रकार गदाधर गौरांग महाप्रभु के रूप को सुशोभित करते थे। जिस श्री चैतन्य की सैया और शयन कक्ष को भी सुमधुर सुगंधित फूलों द्वारा सज्जित करते थे। प्रतिदिन श्री चैतन्य की दिव्य देह पर लेपित करने हेतु चंदन का लेप भी बनाते थे श्री चैतन्य के पूरे शरीर में लेप करने के लिए। इसलिए श्री चैतन्य का एक नाम चंदनांगदी है, विष्णु शास्त्र नाम में एक नाम चंदनांगदी भी है। सुवर्ण वर्णो हेमांगो वरांगस चंदनांगदी, आठ नाम श्री चैतन्य के विष्णु शास्त्र नाम में मिलते हैं, तो एक चंदनांगदी है। चंदनांगदी का मतलब है कि जिनके अंगद यानी बाजूबंद चंदन की लकड़ी के बने। लेकिन चंदनांगदी का दूसरा अर्थ ये भी है जो अपने पूरे शरीर में चंदन का लेप लगाते हैं। और चंदन का लेप कौन लगाते थे? गदाधर पंडित लगाते थे, चंदन घिसते भी थे। और पूरे शरीर में चंदन का लेप लगाने के लिए कितना घिसना होता होगा वो आप सोचिए। हाँ, गौर गदाधर एक वृक्ष के मूल पर बैठ गए जो एक मंच का कार्य कर रहा था। श्री नित्यानंद उनके दाईं ओर विराजित हुए। तो वही हैं कृष्ण बलदेव राधा या सीताराम लक्ष्मण। तो राम के दाहिनी तरफ लक्ष्मण हैं, तो यहाँ पर श्री चैतन्य के दाहिनी तरफ नित्यानंद हैं और बाईं तरफ सीता हैं, तो गदाधर पंडित बाईं तरफ हैं। तो इसने लिखा है कि नित्यानंद दाईं ओर विराजित हुए और श्रीवास पंडित ने उन्हें पुष्पों द्वारा सजाया। श्री अद्वैताचार्य ने आरती की, नरहरि ने चमर डुलाया, शुक्लांबर ने चंदन अर्पण किया, मुरारी गुप्त ने भगवान की महिमा गान की। विजय मुकुंद पुरुषोत्तम माधव और वासुदेव घोष ने विभिन्न रागों में विविध गीत गाए। इस प्रकार श्री चैतन्य ने अपनी नदिया लीला संपन्न की। गदाधर पंडित भी संन्यास ग्रहण करके भगवान चैतन्य के संग रहने हेतु जगन्नाथपुरी चले गए। अब एक त्रुटि हुई इनके द्वारा, वो क्या हुआ कि इन्होंने क्षेत्र संन्यास ले लिया। इन्होंने सोचा कि श्री चैतन्य माता की आज्ञा से जगन्नाथपुरी नहीं छोड़ेंगे, तो श्री चैतन्य का संग करने के लिए गदाधर पंडित ने भी संन्यास लिया, ब्रह्मचारी से सीधे संन्यास लिया। इन्होंने गृहस्थाश्रम में इन्होंने प्रवेश नहीं किया, विवाह नहीं किया, लेकिन क्षेत्र संन्यास ले लिया, जगन्नाथपुरी से बाहर नहीं जाएंगे। ये सोच के कि श्री चैतन्य नहीं जाएंगे, लेकिन चैतन्य ने क्षेत्र संन्यास नहीं लिया था तो वे जा सकते थे। तो फिर आगे चल के फिर बहुत असुविधा हुई। जब श्री चैतन्य वृंदावन जाते हैं तो उनके साथ ये भी जाना चाहते हैं और श्री चैतन्य उनको मना करते हैं, आपने क्षेत्र संन्यास लिया है। तो फिर श्री चैतन्य ने उनको नहीं जाने दिया और ये मूर्छित हो गए। तो उन्होंने क्षेत्र संन्यास, जिसमें सन्यासी धाम से कभी प्रस्थान नहीं करता, ग्रहण कर इन्होंने पूर्ण प्रेम और श्रद्धा पूर्वक टोटा गोपीनाथ के अर्चा विग्रह की सेवा की। श्री कृष्ण चैतन्य नियमित रूप से श्री गदाधर के श्रीमद् भागवत के रसिक पाठ का रस लेने हेतु आते थे। अब श्री चैतन्य गदाधर पंडित से श्रीमद् भागवत पाठ सुनते थे रोज। रोज का नियम था श्रीमद् भागवत का पाठ सुनने का, जबकि वल्लभाचार्य के द्वारा भागवत का पाठ नहीं सुनने के लिए श्री चैतन्य ने कुछ कारण बता दिए कि मेरे पास समय नहीं है। और देवानंद पंडित का भागवत पाठ तो श्री चैतन्य कहते थे कि व्यर्थ है, ये किसी जन्म में भागवत का अर्थ नहीं जान पाएगा, तो उससे सुनने की तो बात दूर है। लेकिन गदाधर पंडित से रोज श्रीमद् भागवत सुनते थे, है ना। और विशेष रूप से कौन सी कथाएं? 100-100 बार ध्रुव महाराज की कथा और प्रहलाद महाराज की कथा 100-100 बार सुनते थे श्री चैतन्य। तो गदाधर पंडित का इतना सौभाग्य है। श्रीमद् भागवत के रसिक पाठ का रस लेने हेतु आते थे। श्री चैतन्य ने टोटा गोपीनाथ के अर्चा विग्रह में विलीन होकर अपनी प्रकट लीला का समापन किया। तो गदाधर पंडित से भागवत सुनते हुए ही श्री चैतन्य टोटा गोपीनाथ के अर्चा विग्रह में समा गए। तो अंतिम लीला भी श्री चैतन्य की गदाधर पंडित के साथ ही है। संपूर्ण विश्व में टोटा गोपीनाथ ही बैठी हुई है, श्री कृष्ण का एकमात्र अर्चा विग्रह है और गदाधर पंडित के कारण बैठ गए। हाँ, तो श्री चैतन्य जब टोटा गोपीनाथ के अर्चा विग्रह में प्रविष्ट हो गए हाँ, तो गदा था पंडित फिर भागवत का पाठ करते थे तो उनकी आंखों से आंसू निकलते थे, श्री चैतन्य के विरह का अनुभव करते थे। तो भागवत की पूरी पोथी गीली हो गई और सब अक्षर मिट गए हैं इनके, और ये फिर बहुत जल्दी इनका शरीर वृद्ध हो गया। तो श्री चैतन्य की उम्र के थे 48 वर्ष में श्री चैतन्य ने जो है इस पृथ्वी को त्यागा, तो उसी अवस्था के ये भी थोड़ा कम ही थे, लेकिन बहुत जल्दी वृद्ध हो गए और शरीर इनका झुक गया, कमर झुक गई। कमर झुक गई तो गोपीनाथ जी की अर्चा विग्रह को फूल माला पहनाने में इनको दिक्कत होती थी, तो गोपीनाथ जी गदाधर पंडित के इस परिश्रम को देख करके उनको सुविधा देने के लिए माला पहनाने के लिए वो बैठ गए। तो अभी बैठे हुए हैं तो टोटा गोपीनाथ अभी भी बैठे हुए हैं, और एक बहुत बड़ी चुनौती है जो अभक्त हैं और जो श्री विग्रह की पूजा को नहीं मानते उनके एक बहुत बड़ी चुनौती है कि ऐसा बैठा हुआ अर्चा विग्रह किसी ने आज तक नहीं बनाया कृष्ण का, और कृष्ण अर्चा विग्रह के रूप में बैठे हैं और अभी भी बैठे हुए हैं, तो एक बहुत बड़ा प्रमाण है। अर्चा विग्रह भी अपने भक्त के भाव के अनुसार ऐसे ऐसे कार्य करते हैं जो कि कोई सोच भी नहीं सकता है, अचिंत लीलाएँ करते हैं। यद्यपि जब श्री चैतन्य ने प्रयाण किया, गदाधर पंडित मात्र 48 वर्ष के थे, अपने प्रिय भगवान से विरह की विकट वेदना के कारण वे जल्दी ही वृद्ध हो गए, और श्री चैतन्य के अपराकट के कुछ ही समय पश्चात गदाधर पंडित अपने प्रिय चा विग्रह टोटा गोपीनाथ में प्रवेश करके भगवान की नित्य लीला में सम्मिलित हो गए। तो गदाधर पंडित ने भी अपना शरीर नहीं छोड़ा, शरीर के साथ ही टोटा गोपीनाथ में प्रविष्ट हुए, और इनकी दंत समाधि वृंदावन के बंसी गोपाल मंदिर के निकट अवस्थित है। एक दांत छोड़ गए अपना तो उसकी समाधि बनी है गदाधर पंडित की। श्री चैतन्य ने कुछ नहीं छोड़ा, श्री चैतन्य की कोई समाधि नहीं, गदाधर पंडित की समाधि है दंत समाधि, वो दांत छोड़ के गए अपना तो वो वृंदावन में बंसी गोपाल मंदिर के निकट है। गदाधर पंडित से संबंधित लीलाएं चैतन्य भागवत में अलग अलग स्थानों में है, तो मैं कुछ आप लोगों को सुनाऊंगा। ये घटना उस समय की है जब श्री चैतन्य शिक्षक के रूप में कार्य कर रहे हैं और विशेष रूप से व्याकरण की शिक्षा देते हैं। उस समय श्री चैतन्य वैष्णव नहीं बने हैं, बल्कि वैष्णवों को देख करके कुछ शब्दों की व्याख्या पूछते हैं और उनको निरुत्तर करते हैं, उनको लज्जित करते हैं, और वैष्णव लोग इनको देख करके बहुत आकर्षित होते हैं लेकिन पहचान नहीं पाते हैं कि ये उनके ही प्रभु हैं, उनके ही ईश्वर हैं, और प्रार्थना करते हैं कृष्ण से कि ये अगर भक्त बन जाए तो तीनों लोकों में इनका हम संग कभी नहीं छोड़ेंगे, लेकिन ये भक्त बन जाएं, हे कृष्ण इनको भक्त बना दो, हे कृष्ण इनको अपना भक्त बना दो, तो वैष्णव लोग जो है ये प्रार्थना करते थे और ये विद्या रस का आनंद ले रहे हैं। वैष्णवों को पाखंडियों के द्वारा तो कष्ट मिल ही रहा है, पाखंडी लोग तो उनका अपमान करते हैं और मजाक उड़ाते हैं, लेकिन श्री चैतन्य भी उनका साथ नहीं दे रहे हैं, विद्या रस का आनंद ले रहे हैं। एक दिन आपने भ्रमण करते समय श्री गदाधर को देखा तो रास्ते में मिल गए, कोई इनके पास नहीं आता, सब डरते हैं इनसे लेकिन रास्ते में कोई मिल जाता है तो उसको पकड़ लेते हैं, जैसे कोई होता है ना कर लेने वाला, कर वसूल करने वाला कहीं मिल जाए तो पकड़ लेगा कि निकालो मेरा कर, तो ऐसे जो है इन्होंने गदाधर को पकड़ लिया। हंसते हुए दोनों हाथों से गदाधर को पकड़ करके रोक लिया और बोले, गदाधर तुम तो न्याय शास्त्र पढ़ते हो, मेरे प्रश्न का उत्तर देकर जाओ। गदाधर ने कहा, पूछो क्या पूछते हो। प्रभु ने कहा मुक्ति का लक्षण तो बताओ। श्री गदाधर ने शास्त्रों में मुक्ति के जितने अर्थ बताए सब कहे, किंतु महाप्रभु ने सब अर्थों का खंडन कर दिया जितने भी अर्थ बताए, और बोले तुम तो उत्तर देना जानते ही नहीं। जिज्ञासा गदाधर बोलाए वचन, प्रभु बोले कहा देखी मुक्ति रे लक्षण। शास्त्र अर्थ जेन गदाधर बका नीला, प्रभु बोले व्याख्या करी ते न जानीला। तो गदाधर ने कहा, अब गदाधर ने अपना अंतिम जो व्याख्या है मुक्ति की वो बताई। दुख के आत्यंतिक नाश को ही शास्त्र मुक्ति कहा गया है। क्या मुक्ति का अर्थ क्या है? दुख का आत्यंतिक नाश शास्त्र में मुक्ति कहा गया है। इस अर्थ को भी श्री गौर ने नाना प्रकार से दोषित ठहरा दिया, उसने बहुत से दोष निकाल दिए उसमें भी। ऐसा कोई तार्किक नहीं था जो इनकी व्याख्या का खंडन कर सके, ऐसा कोई विद्वान ना था जो प्रभु के सामने बोल सके। श्री गदाधर ने सोचा अब तो भाग करके ही जान बच सकती है। श्री प्रभु ने कहा गदाधर आज घर जाओ, कल तुम जल्दी आ जाना, मैं तुमको मुक्ति का अर्थ अच्छी प्रकार समझाऊंगा। श्री गदाधर प्रभु को नमस्कार कर घर चले गए। इस प्रकार प्रभु सर्वत्र नगर में घूमा करते थे। नाना रूपे दोषे प्रभु सरस्वती पति, हे नाई तार्ग के जेता कर स्थिति। हे न जन नाई जे प्रभु रे साने बोले, गदाधर भावे आजीवर्ती पलाई ले। अब एक घटना है उस समय की, जब श्री चैतन्य गया की यात्रा में गए और वहाँ इन्होंने ईश्वरपुरी से दीक्षा ली और कृष्ण प्रेम को प्रकट किया। और अब इतना कृष्ण प्रेम हो गया इनके अंदर कि माता सची भी चिंतित हो गई। बहुत सची माता को चिंता हो गई कि अब पता नहीं कैसे जीवन की रक्षा हो गई, क्योंकि श्री चैतन्य बिल्कुल बस में नहीं है, होश में नहीं है, और कभी दौड़ते हैं भागते हैं, कभी वृक्ष में चढ़ जाते हैं, कभी वृक्ष से नीचे गिर जाते हैं। तो बहुत मतलब स्थिति अनियंत्रित हो गई। तो सची माता बहुत चिंतित हैं। तो गदाधर जी आए प्रसन्नतापूर्वक प्रभु के सामने। गदाधर को देखकर प्रभु पूछने लगे, पीतंबर धारी वो सांवला कृष्ण कहाँ है? ऐसे व्याकुल हैं कृष्ण के विरह में, गदाधर से पूछते हैं पीतंबर धारी सांवला कृष्ण कहाँ है, कहाँ है? उस प्रभु की उस आरती को देखकर सबका हृदय फटने लगा। क्या कहेगा प्रभु को उत्तर दें? अब किसी को उत्तर नहीं सोचता, क्या उत्तर दें, कहाँ है कृष्ण, कहाँ है? ये बात किसी को स्फुरित नहीं होती। गदाधर हड़बड़ाकर बोले, श्री कृष्ण तो निरंतर आपके हृदय में है। तो गदाधर ने जो इतना अच्छा उत्तर दिया कि जैसे कि कोई व्यक्ति संतुष्ट हो जाएगा कि आपके हृदय में है, श्री कृष्ण हृदय में है। ये वचन सुनकर प्रभु नाखून से अपना हृदय चीरने लगे और बड़ी दुर्घटना हो गई। अब गदाधर पंडित ने सबसे अच्छा उत्तर दिया सोच के कि इससे इनकी चंचलता और जो विरह अशांति दूर हो जाए, लेकिन और उल्टा परिणाम हुआ। श्री चैतन्य ने अपने हृदय को नाखून से चीरने लगे, मेरे हृदय में, मेरे हृदय में। अब और भी बड़ी दुर्घटना हो रही है। गदाधर ने जैसे तैसे प्रभु के दोनों हाथ पकड़ लिए और समझाते हुए उनको स्थिर किया। गदाधर बोले, श्री कृष्ण अभी आए जाते हैं, थोड़ा स्थिर तो हो। तुरंत तुरंत बात को बदल दी गदाधर पंडित ने, कि हृदय में अगर है ये कहने से अगर बहुत उल्टा परिणाम हो रहा है तो बात को बदल दिया, अभी आ रहे हैं, थोड़ा स्थिर तो हो। ऐसा कहते हुए सची माता ने गदाधर को देखा। सची माता बहुत सची माता को सांत्वना मिली कि गदाधर ने बड़ी रक्षा कर ली मेरे पुत्र की। गदाधारे देखी प्रभु करे न जिज्ञासा, कोता कृष्ण आछे न श्यामल पीते वासा। से आरती देखी ते सर्व हृदय बेदारी, की बोले बलि बहन बचन न स्फूरी। संभ्रम में बोले न गदाधर महाशय, नेरेवादी आछे कृष्ण तुम्हारे हृदय। हृदय आछे न कृष्ण वचन सुनिया, आपन हृदय प्रभु चीरे न खदिया। हाथे बैठे गदाधर दुई हाथे धारी, नाना मते प्रभु धीरा स्थिर करी। ऐ आशीवे ने कृष्ण स्थिर हो खानी, गदाधर बोले आए देखी ले अपनी। अब माता सची ने सोचा, गदाधर पर माता बहुत प्रसन्न हुई। वो मन में सोचती है कि अहो, बालक में ऐसी बुद्धि तो मैंने कहीं नहीं देखी। मैं तो डर के मारे पुत्र के सामने भी नहीं जा सकती हूँ। सची माता को बहुत डर लगता है। कृष्ण के विरह के आवेश में माता सची कुछ जानती नहीं, क्या करूं, क्या बोलूं, क्या समझाऊं और क्या उपाय करूं, हैं? और उनको पुत्र का जो है कुछ रोग समझ आता है कि मेरे पुत्र को कोई रोग हो गया है। तो सची माता तो जो है समझ नहीं पाती, लेकिन गदाधर की ऐसी बुद्धि देख करके माता सची अपने मन में सोचने लगी कि बालक में ऐसी बुद्धि तो मैंने कहीं नहीं देखी। मैं तो डर के मारे पुत्र के सामने भी नहीं जा सकती हूँ, और इसने बालक होकर भी कैसे सुंदर ढंग से समझाया। फिर वो गदाधर से बोली, वत्स, तुम तो सदा यहीं रहा करो, इसका साथ छोड़कर कहीं मत जाओ। सची माता को विश्वास हो गया कि गदाधर अगर साथ में है निमाई के, तो निमाई की रक्षा हो जाएगी, तो फिर निमाई को कोई खतरा नहीं है। तो गदाधर से क्या बोलती हैं माता कि तुम हमेशा इसके साथ रहो, इसको छोड़ के मत जाना। प्रभु के अद्भुत प्रेम योग को देखकर सची माता उनको अपना पुत्र समझना भूल जाती हैं। वे मन में सोचते हैं कि ये पुरुष साधारण मनुष्य नहीं है। मनुष्य के नेत्रों से क्या इतनी जल धाराएं बह सकती हैं, ना जाने ये कौन महापुरुष आया है। अतः भय पाकर सची माँ प्रभु के सामने नहीं जाती हैं। एक लीला गदाधर पंडित की बहुत विस्तृत है, पुंडरीक विद्यानिधि के साथ है। तो अगर समय होगा तो फिर हम उस लीला को सुनेंगे, लेकिन और लीलाएं हम अभी सुनना चाहते हैं। तो गदाधर जी सदा साथ ही रहते थे। अब श्री चैतन्य जब सन्यासी हैं तो गदाधर पंडित भी सन्यासी हैं, हैं? और कहां पर हैं? जगन्नाथपुरी में है। श्री गदाधर सदा साथ ही रहते थे। गौर गदाधर का विच्छेद कभी नहीं होता था। क्या भोजन, क्या शयन अथवा पर्यटन में श्री गदाधर हर समय प्रभु की सेवा में रहते थे। श्री गदाधर सामने ही बैठकर भागवत पाठ करते और श्री गौर प्रेम रस में बड़े मत होकर सुनते थे। श्री प्रभु गदाधर के वाक्यों से ही सुख पाते थे और उन्हीं के साथ वैष्णव स्थानों में भ्रमण भी करते थे। नेरेवधी गदाधर थाके न संगति, प्रभु गदाधर रे विच्छेद नाही कति। की भोजन की शयन की वा पर्यटने, गदाधर प्रभु रे सेवे न अनुक्षणे। गदाधर पढ़े सम्मुखे भागवत, सुनी प्रेम रसे प्रभु है महामत। गदाधर वाक्य मात्र प्रभु सुखे है, भ्रमे गदाधर संगे वैष्णव आलय। अब एक बड़ी सुंदर लीला है और उसके सुनने का भी बहुत महात्म्य है, इसलिए आप लोग सुने तो कानों को पूरा खोलिए, कानों को 100% खोलिए, और कानों खोलने के लिए आंखें भी खोलनी पड़ेंगी, आंखें नहीं बंद कर सकते। श्री नित्यानंद और गदाधर की परस्पर में जो आंतरिक प्रीति है, उसे कहने की शक्ति केवल ईश्वर में ही है। सुनने ध्यान से, क्या गदाधर नित्यानंद की जो आंतरिक प्रीति है, उसको कहने की शक्ति केवल किस में है? ईश्वर में ही है। वृंदावन दास ठाकुर कह रहे हैं कि मेरे पास शक्ति नहीं है ये बताने की। क्या बताने की? नित्यानंद और गदाधर की प्रीति, आंतरिक प्रीति कितनी है, और है क्यों नहीं होगी, कि ये लक्ष्मण और सीता हैं श्री राम के संग में सीता जी भी रहते हैं, लक्ष्मण भी रहते हैं, तो ये जो है आंतरिक प्रीति है। कहने की शक्ति ईश्वर में ही है और किसी के अंदर नहीं है। श्री गदाधर के भवन में है गोपीनाथ साक्षात श्री कृष्ण ही थे। इनको श्री चैतन्य ने भी स्वयं गोद में लिया था और उस विग्रह को देखकर अत्यंत पाखंडी भी अपने को भूल जाते थे। जो पाखंडी जो मूर्ति पूजा का विरोध करते हैं, तो गोपीनाथ जी उस समय तो बैठे नहीं थे, उस समय तो खड़े थे। उनका दर्शन करके पाखंडी भी भूल जाए अपने को कि क्या आश्चर्य है। जैसे कि बोलने वाले हों, कभी कभी हम दर्शन करते हैं अर्चा विग्रह का तो ऐसा लगता है कि अभी बोलने वाले हैं। तो ऐसे जो गोपीनाथ जी हैं, पाखंडी भी दर्शन करता है तो अपने को भूल जाता है, अपने को भूल जाता है, यानी वो खुद अपने को मूर्ति समझने लगता है, अचल हो जाता है, और गोपीनाथ जी उसको सचल दिखाई देते हैं कि ये बोल रहे हैं और मैं चुप हो गया हूँ। तो वो मूर्ति नहीं समझता, उल्टा सोचता है, अपने को मूर्ति समझता है और गोपीनाथ जी को समझता है जीवंत, अपने को जड़, वो खुद जड़ हो जाता है और गोपीनाथ जी को जीवंत देखता है। लेकिन पाखंडी लोग क्या सोचते हैं, हम जीवंत हैं और मूर्ति जड़ है। लेकिन जब गदाधर पंडित के अर्चा विग्रह को देखते हैं गोपीनाथ जी को, तो उल्टा सोचने लगते हैं कि हम जड़ हैं और ये क्या हैं, जीवंत हैं। तो ये प्रभाव इनका पहले से ही है, अब तो और ज़्यादा बढ़ गया है कि बैठे हुए हैं। उस विग्रह को देखकर अत्यंत पाखंडी भी अपने को भूल जाते थे। श्री मुरलीधर के मुख और अंग की भंगिमा को देखकर नित्यानंद के आनंद आश्रुओं की सीमा नहीं रही। नित्यानंद ने जब दर्शन किया गोपीनाथ जी का, आनंद के आश्रुओं की सीमा नहीं, नित्यानंद प्रभु के आनंद के आंसू इतने बहे कि कोई रुकते ही नहीं है। देखे श्री मुरली मुख अंगेरे भंगीमा, नित्यानंद आनंद अश्रुर नहीं सीमा, नित्यानंद आनंद अश्रुर नहीं सीमा। श्री गदाधर श्री नित्यानंद का आगमन जानकर श्री भागवत पाठ छोड़कर शीघ्रता से आए। गदाधर भागवत का पाठ कर रहे हैं उस समय श्री चैतन्य भी जगन्नाथपुरी में है और नित्यानंद प्रभु उस समय गौर देश से चल करके आए हैं, गदाधर से मिलने के लिए आए हैं। उस समय यात्रा सब पैदल होती थी, गौर देश से पैदल जगन्नाथपुरी आए, कितनी दूर से, कितने दिन लगे होंगे। और श्री भागवत को पाठ छोड़ करके कौन आए दौड़ करके, गदाधर पंडित आए अपने भागवत के पाठ को छोड़ करके आए। श्री नित्यानंद का आगमन जान करके शीघ्रता से आए, दोनों एक दूसरे का मुख देखते ही परस्पर कंठ पकड़कर रोने लगे, एक दूसरे का गला पकड़ लिया और रो रहे हैं, दोनों रो रहे हैं परस्पर। दोनों प्रभु एक दूसरे को नमस्कार करने और एक दूसरे की महिमा वर्णन करने लगे, दोनों एक दूसरे को नमस्कार करते हैं। नित्यानंद वे जय जानिया गदाधर, भागवत पाठ छाड़ी आईला सत्वर, दोहे मात्र देखिया दुहार श्री वदन, गलाधारी लागिलेन करी ते क्रंदन, अन्योन्य दोही प्रभु करे नमस्कार, अन्योन्य दोही कहे महिमा दुहार। एक ने कहा, अब किसने कहा दोनों में से, किसी एक ने कहा, क्या आज नेत्र निर्मल हुए, क्यों आपका दर्शन करके। तो एक ने कहा दूसरे से, आज नेत्र निर्मल हुए, तो दूसरा बोला आज जन्म सफल हो गया। दोनों प्रभुओं के शरीर में बाहरी ज्ञान नहीं रहा और दोनों भक्ति के आनंद सागर में डूब गए। हरि बोल। अन्योन्य दोहि प्रभु करे नमस्कार, अन्योन्य दोहि कहे महिमा दुहार, केहो बोले आज हैला लोचन निर्मल, केहो बोले आज हैला जाना में सफल, बाह्य ज्ञान नाही दोहि प्रभु रे शरीरे, दोहि प्रभु भासे भक्ति आनंद सागरे। प्रेम भक्ति का ऐसा प्रकाश हुआ जिसे देखकर सब दास चारों ओर रो पड़े। जितने सेवक हैं तो वे भी क्या करेंगे, रोने की सेवा और क्या करेंगे, क्योंकि दोनों एक दूसरे का गला पकड़ करके रो रहे हैं, तो सेवक क्या करेंगे, वे भी रोएंगे, उनकी यही सेवा है, तो वे भी रो रहे हैं, सभी दास रो रहे हैं। श्री नित्यानंद और गदाधर में कैसी अद्भुत प्रीति थी। यदि कोई व्यक्ति एक का प्रिय होता, सुनना ध्यान से, कैसी प्रीति कि कोई व्यक्ति एक का प्रिय होता तो दूसरा उससे बोलता भी नहीं था। प्रीति ऐसी होना चाहिए, कैसी होना चाहिए, हमारी आपसे प्रीति है, लेकिन आपसे कोई नफरत करता है तो मैं कहूँगा भी मुझसे तो नफरत नहीं करता, मैं तो बात करूँगा। आजकल तो ऐसी प्रीति होती है, मेरी आपसे प्रीति है, आपसे कोई नफरत करता है तो मैं उससे बात करूँगा भी, मेरे से तो अच्छे संबंध है। लेकिन इन दोनों में कैसी प्रीति है, एक का कोई अप्रिय होता तो दूसरा उससे बोलता नहीं था, तो दूसरा भी बात नहीं करेगा। अर्जुन कृष्ण में वैसे ही है, कृष्ण कहते हैं अर्जुन तुम्हारा जो शत्रु है वो मेरा शत्रु है, तुम्हारा जो मित्र है वो मेरा मित्र है ना। तो यहाँ इस प्रकार की प्रीति है। श्री गदाधर का संकल्प था कि नित्यानंद के निंदक का मुंह नहीं देखना है, ये संकल्प किया उन्होंने, जो निंदा करता है नित्यानंद की उसका मुंह नहीं देखना है। गदाधर की चाहे जितनी प्रशंसा करे, नित्यानंद की निंदा करता है तो गदाधर उसका मुंह नहीं देखेंगे। की अद्भुत प्रीति नित्यानंद गदाधरे, एक अप्रिय आर संभाषण करे, गदाधर देवेर संकल्प ए रूप, नित्यानंद निंदा केर न देखेरे मुख। जिनकी इसी नित्यानंद में प्रीति नहीं, श्री गदाधर पंडित उनको दर्शन भी नहीं देते थे। कुछ क्षण में दोनों प्रभु स्थिर होकर श्री चैतन्य का संकीर्तन करने को एक स्थान में बैठ गए। उसके बाद श्री गदाधर ने श्री नित्यानंद को निमंत्रण दिया कि आज भिक्षा यहीं करो, सन्यासी को भोजन नहीं करने का निमंत्रण दिया जाता, भिक्षा का निमंत्रण दिया जाता है। भोजन का निमंत्रण देंगे तो वो नहीं करेगा, भिक्षा का निमंत्रण करें, भाई रूखा सूखा कुछ है तो खाए, फिर आप चाहे जितना खिलाओ अच्छा वो अलग बात है। लेकिन अगर कहें सन्यासी को कि आपके लिए हमने 6 प्रकार के रस के व्यंजन तैयार किए हैं, 56 प्रकार के भोग बनाए हैं, आप आइए हमारे पास, तो वो नहीं आएगा। तो आपने चाहे जितना बनाए बढ़िया, या आप कहिए कि कुछ जो है चावल है, रूखा सूखा चावल है, आपको जो है वही खाना है, तो आएंगे। तो गदाधर ने क्या कहा, भिक्षा यहीं करो। गदाधर देवेर संकल्प ए रूप, नित्यानंद निंदा केर न देखेर मुख, नित्यानंद स्वरूपेर प्रीति जाजन जाए नाही, देखाओ न देन तारे पंडित गोसाई, तबे दोई प्रभु स्थिर है एक स्थाने, बसिले न चैतन्य मंगल संकीर्तने, तबे गदाधर देव नित्यानंद प्रति निमंत्रण करी लेन आजी भिक्षा इथि। तो आज की भिक्षा आपकी यहीं पर है, ये कहा। श्री नित्यानंद प्रभु श्री गदाधर के गोपीनाथ जी के भोग के लिए यत्न पूर्वक एक मन चावल लाए थे, एक मन चावल सोचो अपने सिर में रख करके लाए, और पैदल एक मन चावल लाए थे, बहुत छोटे चावल थे, सफेद चावल थे, सब प्रकार से ठाकुर भोग के लिए थे, जिनको गौड़ देश से गदाधर जी के लिए ये लेके आए, नित्यानंद प्रभु लेके आए, ऐसा प्रेम है, एक मन चावल लेके आए। नित्यानंद गदाधर भिक्षा रे कारणे, एक मान चावल आने आछे न याताने, अति सूक्ष्म शुक्ल देव योग्य सर्वे मते, गदाधर लागे आने आछे गौड़ हेते। चावल और एक सुंदर रंगीन वस्त्र, ये दोनों श्री गदाधर के सामने रखे और कहा, हे गदाधर इन चावलों को सिद्ध करके गोपीनाथ को अर्पण करके भोग लगाओ। तो गदाधर चावलों को देखकर हंसे और बोले, प्रभु ऐसे चावल तो नेत्रों से कभी नहीं देखे। गदाधर बोले, क्या बोले, ऐसे चावल तो नेत्रों से कभी नहीं देखे, प्रभु इन चावलों को क्या वैकुंठ से लाए हो। गदाधर पंडित बोले, इन चावलों को कहाँ से लाए, वैकुंठ से लाए, ये पृथ्वी में तो होते नहीं है चावल, एकमात्र लक्ष्मी जी इन चावलों की रसोई करती हैं। गदाधर बोले, तो लक्ष्मी तो यही है, तो ये तो वैकुंठ में लक्ष्मी जो है बनाती हैं इन चावलों को, और श्री कृष्ण ही इन चावलों का भोग लगाते हैं, खाते हैं। ये किसने कहा? गदाधर पंडित ने कहा। गदाधर जी आनंद में चावलों की प्रशंसा करते हुए वस्त्र लेकर गोपीनाथ के सामने गए। दिव्य रंगीन वस्त्र गोपीनाथ के शरीर में अर्पण किया और शोभा देकर आनंद विभोर हो गए। गोपीनाथ जी बहुत सुंदर हो गए। नित्यानंद प्रभु का रंगीन वस्त्र पाकर के जब उन्होंने धारण किया तो गोपीनाथ जी बहुत सुंदर लग रहे हैं, अपनी सुंदरता बढ़ा दी, क्योंकि नित्यानंद का प्रेम, नित्यानंद प्रेम से लाए उस वस्त्र को। तो गोपीनाथ जी ने जैसे धारण किया तो अपनी सुंदरता इतनी बढ़ा दी कि मतलब वस्त्र स्वीकार कर लिया है, तुम्हारा वस्त्र जो है मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो गोपीनाथ जी जो है इस तरह से शोभा उनकी बढ़ गई और गदाधर आनंद विभोर हो गए। तब रसोई का कार्य प्रारंभ किया। गदाधर ए तंडुल करिया रंधन श्री गोपीनाथ रे दिया करीवा भोजन। आप स्वयं उद्यान में साग लेने को गए। गदाधर पंडित खरीदने नहीं जाते थे सब्जी, वहाँ उगाते थे सब्जी और उसी को ही ताजी तोड़ करके लाए। वो टोटा का मतलब बगीचा ही होता है ना, तो बगीचा गदाधर पंडित कहा जिस उसमें सब्जी है, तो सब्जी लेने को गए। किसी ने बोया नहीं था, देववर्ष ही जो साग उपज आया वो तोड़ करके लाए, उसी एक का उन्होंने पाक किया यानी सब्जी बनाई। गदाधर पंडित सब्जी बनाई है ना, राधा रानी है ना, तो उनको उगाने की भी जरूरत नहीं है, कृष्ण की कृपा से सब सब्जी अपने आप उगाती है वहाँ। इमली वृक्ष के जितने अति कोमल पत्ते थे उन्हें लाए और पीस कर नमक और जल मिलाया। गदाधर ने उनको रंधन करके अम्ल नामक व्यंजन सिद्ध किया, उसको बोलते अम्ल। हाँ, साग एक प्रकार की साग है जिसका नाम है अम्ल, तो उसमें इमली के पत्ते जो है पीस करके और पानी मिला करके नमक मिला करके और सब्जी तैयार की, वो सब्जी है अम्ल सब्जी। और गोपीनाथ जी के आगे ले जाकर भोग लगाया। उसी समय श्री गौरचंद्र भी आ पहुँचे, जिनकी कमी थी वो आ गए। श्री गौरचंद्र आ पहुँचे प्रसन्न मुख से, हरे कृष्ण कहते हरि बोल। श्री गौरचंद्र का आगमन हुआ। तबे रंधने रे कारे कारे ते लागीला, आपने रोटाए साग तो लेते चलीला, के हो बोने नाही देवे हई आचे साक, ता तो ले आनिया कारीला एक पाक। तेताली वृक्षे रे जाते पत्र सुकुमल, ता आनी वाटी तथि दीला लूण जल। तारे एक व्यंजन कारीला अम्ल नाम, रंधन कारिया गदाधर भाग्यवान। गोपीनाथ अग्रे निया भोगे लगाईला, हेन काली गौरे चंद्र आसिया मिली। प्रसन्न श्री मुखे हरे कृष्ण कृष्ण बाली, विजय हरी हईला गौर चंद्र कुतूहली। और पुकारे, पुकारने लगे ऊंचे स्वर से, गदाधर गदाधर। उस समय शीघ्रता से आकर गदाधर ने चरणों में वंदना की। हंसकर श्री गौरचंद्र ने कहा, क्यों गदाधर, क्या हम निमंत्रण में नहीं हैं? मैं तो आप दोनों से कोई अलग नहीं हूं, आप नहीं दोगे तो अभी मैं बलपूर्वक खाऊंगा। देखो भक्तों का छीन करके खाते हैं, आप भक्तों के जो है हजारों प्रकार के भोग देखते भी नहीं हैं। गदाधर गदाधर डाके गौर चंद्र, संभ्रमे बंदे न गदाधर पद द्वंद। हसिया बोले न प्रभु के न गदाधर, आमी की न हई निमंत्रण निमंत्रण रे भीतर। आमी ता तो मारा दोई हई ते भिन्न नाही, ना दिले वो तो मारा बाले ते आमी खाई। श्री नित्यानंद के द्वारा लाया हुआ तो जो है चावल है, अब मेरे खाने का कारण क्या है? पहला कारण तो यह है कि नित्यानंद लाए हैं चावल, है तो मुझे खाना ही है, मैं छोड़ूंगा नहीं। और दूसरा गोपीनाथ का प्रसाद है, तो इसलिए मैं नहीं छोड़ूंगा। और तीसरा तुम्हारी रसोई है और तुमने बनाया है, तो तीन कारण हैं जिनको कि मैं बलपूर्वक खाऊंगा, नहीं दोगे तो भी खाऊंगा। भगवान कह रहे हैं नित्यानंद द्रव्य गोपीनाथे रे प्रसाद तुम्हारे रंधन मोर इथे आछे भाग। श्री नित्यानंद और गदाधर दोनों ही प्रभु के कृपा वचन सुनकर सुख के समुद्र में डूब गए। नित्यानंद प्रभु दोनों सुख के समुद्र में डूब गए कि अभी भोजन का समय था और आ गए, तुरंत आ गए। गदाधर ने प्रसन्न होकर प्रसाद लाकर श्री गौरचंद्र के सामने रख दिया और अन्न की सुगंध से पूरा बगीचा भर गया। इतना सुगंध, हरिबोल हरिबोल हरिबोल। कृपा वाक्य सुने नित्यानंद गदाधर मग्न हई लेन सुख सागर भीतर संतोष प्रसाद आनी देव गदाधर धोई लेन गौर चंद्र प्रभु रे गोचर सर्व टोटा व्यापी लेके अन्य सुगंधे भक्ति करी प्रभु पुन पुन अन्न बंदे। श्री प्रभु भक्ति पूर्वक बारंबार अन्न की वंदना करने लगे। ये अन्न क्या है? स्वप्रसाद अन्न दिलो भाई, ये प्रसाद अन्न है। तो श्री प्रभु बार बार उस प्रसाद अन्न की वंदना करने लगे, प्रशंसा करने लगे। हम लोग क्या करते हैं, नहीं ठीक नहीं है, इसमें नमक कम मिलाया, इसमें ये नहीं है, इसमें वो नहीं है, है ना? लेकिन नहीं, जो भी अन्न मिला है प्रसाद अन्न सही अन्नामृत पाओ, राधा कृष्ण गुण गाओ है। तो यहाँ प्रभु भक्तिपूर्वक बारंबार अन्न की वंदना करने लगे। श्री प्रभु ने कहा अन्न को तीन समान भाग करके एक जगह बैठ करके तीनों भोजन करेंगे, तीन बराबर हिस्से करो और तीनों एक साथ बैठ करके खाएंगे। श्री नित्यानंद के तंडुलों की प्रीति से महाप्रभु भोजन करने को विराजे। ये तंडुल हैं, नित्यानंद प्रभु के तंडुल हैं। प्रीति से महाप्रभु भोजन करने को विराजे और नित्यानंद और गदाधर उनके दोनों ओर भोजन करने के लिए बैठ गए। तो आप जानते हैं कि दाई तरफ कौन बैठे होंगे, इसमें तो नहीं बताया गया, लेकिन एक एक तरफ दोनों बैठे हैं तो श्री चैतन्य के दाई तरफ कौन बैठे हैं? नित्यानंद प्रभु, और बाई तरफ गदाधर। तो तीनों बैठे एक साथ, नित्यानंद गदाधर उनके दोनों ओर भोजन करने बैठे। श्री महाप्रभु ने संतुष्ट होकर अन्य व्यंजनों की प्रशंसा की। श्री प्रभु ने कहा इस अन्न की गंध से ही कृष्ण भक्ति होती है। खाना तो बहुत दूर की बात है, सुगंध से ही कृष्ण भक्ति होती है, इसमें अन्यथा नहीं है। हे गदाधर, तुम्हारी रंधन क्रिया कैसी है, रसोई तुम्हारी रसोई कैसी है? मैंने तो ऐसा साग कभी नहीं खाया। अरे गदाधर, तुम्हारी क्या विचित्र रसोई है, आहा इमली के पत्तों का ऐसा विलक्षण साग बनाया है, जान लिया वैकुंठ में तुम ही रसोई करते हो। दुई प्रभु भोजन करे न दुई पासे संतोषे ईश्वर अन्य व्यंजन प्रशंसे। प्रभु बोले ए अन्य रंधे ओ सर्वता कृष्ण भक्ति है इथे नाही के अन्यथा। गदाधर की तुमार मनोहर पाक आमिता ए मत कभु नाही खाई शक। गदाधर की तुमार विचित्र रंधन तेताली पातेर कर ए मत व्यंजन। बुझी लांग वैकुंठे रंधर कर तुमी तबे आर आपना रे लुकाओ वकीनी। जान लिया वैकुंठ में तुम ही रसोई करते हो, अब अपने को छिपाते क्यों हो? गदाधर जो है लज्जित हो रहे हैं। गदाधर पंडित श्री चैतन्य की प्रशंसा को सुनकर के लज्जित हो रहे हैं। तो श्री चैतन्य कहते हैं अपने को क्यों छिपाते हो, मैंने तो जान लिया। इस प्रकार बड़े आनंद पूर्वक हास परिहास करते हुए तीनों प्रभुओं ने प्रेम रस से भोजन किया। इन तीन जनों की प्रीति को ये तीनों ही जानते हैं, और कोई नहीं जानता, तीन के अलावा और कोई चौथा नहीं जानता। इन तीनों की प्रीति परस्पर कैसी है ये तीनों ही जानते हैं। श्री गौर किसी से शीघ्र ही नहीं कहते, कुछ समय में तीनों प्रभु भोजन करके उठे। उस समय क्या हुआ, सुन रहे सब लोग, उस समय क्या हुआ? तीनों उठे भोजन करके, एक एक करके नहीं उठे, तीनों एक साथ उठे। अगर एक ने भोजन कर लिया तो भी वो बैठे रहेंगे, जब तक तीनों का भोजन समाप्त नहीं होता है तब तक कोई एक नहीं उठेगा है? तब भक्तों ने महाप्रसाद की लूट मचाई। इस आनंदपूर्ण भोजन लीला का जो पाठ करेंगे और जो श्रवण करेंगे, सुन रहे, इस आनंदपूर्ण लीला का जो पाठ करेंगे और जो श्रवण करेंगे, तो पाठ तो मैं कर रहा हूं और सुन रहे हैं आप, जो पाठ करेंगे वह जो श्रवण करेंगे उन सब प्राणियों को श्री कृष्ण चंद्र की भक्ति और श्री कृष्ण चंद्र प्राप्त होंगे। जिनके ऊपर श्री गदाधर पंडित शुभ दृष्टि करते हैं केवल वही श्री नित्यानंद को जानते हैं, और श्री नित्यानंद जिन पर मन में प्रसन्न होते हैं उन्हीं को गदाधर से ग्रहण कराते हैं और वही जान पाते हैं। इस प्रकार नित्यानंद प्रभु ने नीलाचल में कुतूहली से गौरचंद्र के साथ निवास किया। श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद व गदाधर तीनों प्रभु निरंतर एक साथ ही रहते थे, तीनों एक साथ ही जगन्नाथ दर्शन करते थे और सब ही संकीर्तन के प्रेमानंद में केवल बेहवल रहते थे। श्री कृष्ण चैतन्य और नित्यानंद मेरे प्राण जीवन है, उनके युगल चरणों के सानिध्य में वृंदावन दास उनकी लीलाओं का गान करते हैं। कथो चाणे प्रभु सब करिया भोजन चली ले ने पत्र लोट कैला भक्त गण ये आनंद भोजन जे पढ़े जे वसुने कृष्ण भक्ति कृष्ण पाए से ही सब जने गदाधर सोभे दृष्टि करे न जहारे से ही से जाने नित्यानंद स्वरूपे रे नित्यानंद स्वरूपो जहार प्रीत मन लो यायन गदाधर जाने से ही जन हे न मते नित्यानंद प्रभु नीला चले रही ले न गौर चंद्र संग कुतूहले तीन जन एकत्र था के निरंतर श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद गदाधर। जैसे वन में तीन लोग साथ रहते हैं राम सीता लक्ष्मण, उसी प्रकार जगन्नाथपुरी में तीनों साथ रहते हैं श्री चैतन्य नित्यानंद और गदाधर। जगन्नाथ एकत्र देखे ने तीन जाने आनंदे बेहवल सबे मात्र संकीर्तने श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद चांदे जान वृंदावन दास तजु पदे युगे गान। तो बहुत सुंदर लीला है भोजन की, अब आप लोग भी भोजन करिए, इस लीला का स्मरण करते हुए आप लोग भी भोजन करिए। श्री गदाधर आविर्भाव तिथि महामहोत्सव की, जगत गुरु शील प्रभुपाद की, श्री श्री राधा पार्थ सारथी ललिता विशाखा गौर निताई सीताराम लक्ष्मण हनुमान प्रहलाद नरसिंह देव की जय।